मेरे स्नेही मित्रों नमस्कार। AFEIS के आज 14 नवंबर 2019 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आप सबसे उच्चतम न्यायालय और सूचना के अधिकार विषय पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए उससे पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। कल के न्यूज में, चाहे वो दूरदर्शन का चैनल रहा हो या फिर रेडियो न्यूज, आपने दो खबरें बहुत प्रमुखता से सुनी और देखी होंगी। पहली खबर तो सूचना के अधिकार के दायरे में जो अब सुप्रीम कोर्ट भी आ गया है, या उन कह लीजिए कि उनको खुद लेकर के आ गए अपने आप को, ये खबर थी। और दूसरी खबर थी कर्नाटक के विधायकों के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल जजमेंट दिया है। उसके तहत तो देखिए थोड़ी सी बात यही है कि जो कर्नाटक के कुछ विधायक जिन्होंने पार्टी बदल ली थी, उन विधायकों को वहां की विधानसभा के स्पीकर ने अयोग्य घोषित कर दिया था, और साथ ही साथ ये भी कह दिया था कि ये अब कुछ समय तक अब जो चुनाव होंगे उसे नहीं लड़ सकेंगे, उसके अयोग्य घोषित कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्यता के मामले में तो सही ठहराया कि ठीक है, ये अब MLA नहीं रह गए हैं, लेकिन स्पीकर के इस फैसले को उन्होंने स्वीकार नहीं किया है कि ये चुनाव नहीं लड़ सकते। अभी कर्नाटक में उपचुनाव होने हैं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि नहीं, ये उस चुनाव में भाग ले सकते हैं, और अगर ये जीतते हैं और मंत्री भी बनते हैं तो वो पद भी धारण कर सकते हैं। तो एक छोटी सी घटना है, चूंकि पॉलिटी में इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं, सीधे सीधे तो नहीं, लेकिन एक उदाहरण है ताकि अगर इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न आते हैं विधानसभा या सदस्यों की योग्यता अयोग्यता की बात या स्पीकर के अधिकार, तो मुझे लगता है कि ये एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई है, आपकी जानकारी में होनी चाहिए। मित्रों, आज मैं दो खबरें जो आपके सामने अब रखने जा रहा हूं, ये न्यूज में नहीं है लेकिन अखबारों में है, और अखबारों में भले ही इसे कुछ अखबारों ने तो इस छापा भी नहीं है, लेकिन एक अखबार में बहुत प्रमुखता से छपी है, और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से ये इसलिए मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मालूम पड़ रही है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं वो हमें ये बताते हैं कि कुछ घटनाएं बहुत ही साइलेंटली घटती हैं। साइलेंटली इस मायने में कि वो हमें मेन स्ट्रीम की न्यूज नहीं लगती, लेकिन होती बहुत इंपॉर्टेंट है, और UPSC ऐसी खबरों के आधार पर क्वेश्चन पूछ लेता है। ऐसी ही एक खबर कल के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में ही घटित हुई है, जो अब चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि हाँ हम भी RTI के दायरे में आ रहे हैं, और ये इतनी बड़ी खबर बन गई कि ये जो अब जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं, ये खबर एक तरह से उसके सामने बौनी पड़ गई, लेकिन आपके ध्यान में मैं लाना चाहूंगा। गवर्नमेंट ने सन 2017 में एक वित्त विधेयक पारित किया था, वित्त विधेयक, ठीक है, वित्त विधेयक और धन विधेयक क्या होता है आप जानते हैं। उसी विधेयक के एक हिस्से में यह व्यवस्था की गई थी कि जो हमारे यहां न्यायाधिकरणों का गठन होता है, जैसे आप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये सब न्यायाधिकरण है, आयकर से संबंधित न्यायाधिकरण है, ट्रिब्यूनल्स के बारे में आप जानते हैं, इनके गठन के नियमों के बारे में कुछ परिवर्तन किए गए थे, ठीक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो परिवर्तन किए गए थे, इन परिवर्तनों को धन विधेयक के तहत रखा गया था, धन विधेयक, और आप जानते हैं कि संविधान के अनुसार जो धन विधेयक होता है वो सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, और उस पर पूरा अधिकार लोकसभा का ही है, उसको अगर लोकसभा पारित कर देती है तो सीधी सी बात है कि वो राज्यसभा के पास भेजा तो जाएगा, लेकिन राज्यसभा को उस पर कोई अधिकार नहीं है, वो परिवर्तन सुझा सकता है, संस्तुति कर सकता है, लेकिन लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है, राज्यसभा में उस पर मतदान भी नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा वो 14 दिन तक उस विधेयक को रोक सकती है, और इसके बाद वो लोकसभा को लौटा देती है। ये शब्द यूज किया गया है कि वह लोकसभा को लौटा देती है बिना उस पर मतदान किए, और वह पारित हो जाता है। इसका मतलब है कि धन विधेयक जब कोई पेश किया जाता है तो उसे पूरा अधिकार लोकसभा का होता है, और लोकसभा का होता है मतलब सरकार का होता है, क्योंकि लोकसभा में सरकार का बहुमत होता है। इस आधार पर इसको धन विधेयक के तहत लिया गया था, क्योंकि इन न्यायाधिकरणों के जो कुछ जो उसमें शामिल किए गए थे उनकी जो सैलरी है वो भारत की संचित निधि से निकलेगी, और संचित निधि से धन निकालने के लिए धन विधेयक जरूरी होता है, धन विधेयक के रूप में उसकी स्वीकृति लेनी पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है, बस आपको केवल यह ध्यान रखना कि नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, सरकार का अधिकार है कि वो इस तरह के कानून बना सकती है, वित्त विधेयक ला सकती है, और संवैधानिक रूप से ठीक भी है, लेकिन जो तर्क दिए गए थे उन तर्कों को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया है। तो बस आप केवल इतना ही ध्यान रखें, मुझे लगता है कि सिविल सर्विस में के लिए इतनी ही जानकारी पर्याप्त होगी। और ज्यादातर मुझे संभावना इस बात की लग रही है कि इस पर प्री में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, एक और जो खबर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आर्टिकल से मैंने लिया है और दैनिक भास्कर का में आज एक आर्टिकल छपा है शशि थरूर जी का, जिनके एकेडमिक नॉलेज से आप बहुत अच्छे तरीके से परिचित होंगे, साइबर सुरक्षा के बारे में। साइबर सुरक्षा आपके मेन एग्जामिनेशन का जो थर्ड पेपर है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। जो सिक्योरिटी वाला टॉपिक है आप देखिए कि बहुत छोटा सा है, उसमें बहुत ही थोड़े से टॉपिक आपको पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि 20 में से 3 से लेके 5 प्रश्न सिर्फ सिक्योरिटी से आ जाते हैं, और जबकि है बहुत थोड़ा सा सिलेबस, बहुत थोड़ा सा है। यानी कि जो भी मेन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स की रणनीति में ये शामिल हो जाना चाहिए कि उन्हें सिक्योरिटी पर बहुत अच्छी तैयारी करनी है, ये आपके नियम में शामिल हो जाना चाहिए, इस संकल्प ले लेना चाहिए। तो ये साइबर सुरक्षा पर ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल मैं आप लोगों को प्रोवाइड ही कर रहा हूं, आप इसमें से बहुत अच्छे जो पॉइंट्स हैं वो आपको नोट कर लेने चाहिए। लेकिन जो दो जो महत्वपूर्ण सूचनाएं मैं यहां आपको देना चाह रहा हूं प्री एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वो है पहला ये है कि हमारा जो कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है, जो एटॉमिक एनर्जी का जो हमारा प्लांट है कुडनकुलम में, अब जाकर के जो नेशनल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसने ये स्वीकार किया है कि इस पर मेलवेयर हमला हुआ था। मेलवेयर हमला आप जानते हैं, यानी कि इसके जो डेटा वगैरह है उनको चुराने की कोशिश की गई, उसके सिस्टम को, जो कंप्यूटर का सिस्टम होता है उसको डैमेज करने की कोशिश की गई। तो ये हो गया साइबर अटैक, जिसके लिए हमें सुरक्षा की जरूरत है, क्योंकि सोचिए कि ये जो परमाणु संयंत्र हैं हमारे कितने सेंसिटिव संस्थान हैं, सुरक्षा की दृष्टि से, ऊर्जा की दृष्टि से, हर दृष्टि से हमारे लिए बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। तो पहला तो यह है कि कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र पर मेलवेयर हमला हुआ, यह नाम आपको मालूम हो जाना चाहिए कि यह कहां हुआ। अब दूसरा जो तथ्य है यह भी आपके नॉलेज में होना चाहिए, सामान्यतः जब आप सिक्योरिटी से संबंधित किताबें पढ़ेंगे तो इसका अलग से जिक्र नहीं मिलता है। कानून का तो उल्लेख होता है और उस कानून में जो कुछ महत्वपूर्ण धाराएं हैं उनका भी उल्लेख होता है, जिसमें यह है कि आप किसी की निजता का उल्लंघन नहीं कर सकते, आप अश्लील सामग्री नहीं भेज सकते, इससे रिलेटेड धाराओं का तो उल्लेख मिलता है, लेकिन इस धारा का उल्लेख अलग से नहीं मिलता है। तो मैं यहां अलग से इसका उल्लेख करने जा रहा हूं, जिसका संबंध हमारे ऐसे संवेदनशील स्थानों की रक्षा से है, और जब मैं रक्षा की बात कर रहा हूं तो ये साइबर सुरक्षा से है। हमारा जो सूचना तकनीकी कानून 2000 है उसका है एक अनुच्छेद 70A, उसमें यह व्यवस्था की गई है कि अगर सरकार चाहे तो जो हमारे रणनीतिक महत्व के स्थान है, जो बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट के हैं, उनको बकायदे महत्वपूर्ण सूचना इंफ्रास्ट्रक्चर घोषित कर सकती है, महत्वपूर्ण सूचना इंफ्रास्ट्रक्चर, और घोषित करके फिर उनके अलग से सुरक्षा की व्यवस्था कर सकती है। देखिए, सामान्य तौर पर भी आप अपना उत्तर लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इस कानून की धारा का उल्लेख कर देंगे तो स्वाभाविक तौर पर जो आपका उत्तर है उसका वजन काफी बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर कि उच्चतम न्यायालय और सूचना का अधिकार। देखिए, इस पर आज अखबारों में काफी कुछ लिखा गया है, कल दूरदर्शन के न्यूज चैनल पर भी जो हमारे पूर्व सूचना आयुक्त रहे हैं उनका काफी लंबा इंटरव्यू था, उसमें भी उन्होंने काफी चीजें सामने रखी हैं, आपने सुना होगा, और आज अखबारों में भी हैं, कुछ एडिटोरियल कमेंट भी हैं, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और आगे भी अब इस पर लेख आएंगे। तो ये क्या कहा गया है, क्या क्या बिंदु रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि उस पर बात करना ज्यादा उपयोगी होगा, एक प्रकार से आपके पढ़े हुए को ही दोहराना होगा। मैं कुछ अलग मुद्दों पर बात करना चाहूंगा जो खासकर जो मेन एग्जामिनेशन है उसमें आपकी मदद कर सके। तो आइए पहले कुछ चीजों को देखते हैं। घटना आपको मालूम है कि 2010 में दिल्ली के हाई कोर्ट ने कह दिया था कि कोर्ट भी, जो न्यायालय है वो भी सूचना के अधिकार के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर वो आगे फिर दायर की गई, अपील की गई, और सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दिया कि नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट भी इसके दायरे में आता है। राइट। अब उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं अलग से की गई हैं कि सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं कि आप इनका ध्यान में रखें तभी आप सूचनाएं मांगे, अदरवाइज फिर सूचना देने के लिए हम बाध्य नहीं हैं, वो सब आज के अखबारों में है, आगे भी आपको पढ़ने को मिलते रहेंगे, वो आप पढ़ लीजिएगा। यहां मैं 3-4 बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। देखिए, पिछले कुछ समय से सूचना के अधिकार में क्या चल रहा है, इन्हीं सब को लेकर के यूपीएससी क्वेश्चन तैयार करेगा। पहला, आपने ध्यान दिया होगा, याद होगा कि कुछ ही महीनों पहले की बात है जब सरकार एक सूचना अधिकार संशोधन विधेयक लेकर के आई और उसमें सरकार ने यह व्यवस्था की कि जो सूचना आयुक्त हैं इनकी जो सेवा शर्तें होंगी उन सेवा शर्तों का निर्धारण सरकार करेगी। सरकार ने अपने हाथ में अधिकार ले लिया और इसको लेकर के काफी विरोध भी हुआ था, अखबारों में भी काफी लिखा गया, क्योंकि सीधी सी बात है कि अगर सरकार ही इसकी सेवा शर्तों का निर्धारण करेगी इनकी तो सरकार का हस्तक्षेप हो गया, और सरकार का हस्तक्षेप हो गया तो सूचना आयुक्त या सूचना आयोग की निष्पक्षता पर, तटस्थता पर संदेह करने की पर्याप्त गुंजाइश बन जाती है, पहली बात। दूसरी बात, कुछ ही समय पहले इसी सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि हमारे जो एनजीओ हैं, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी आरटीआई के दायरे में आते हैं। उन्होंने कहा था कि नहीं, हम आरटीआई के दायरे में नहीं आते। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप चूंकि सरकार से अनुदान लेते हैं और जो सरकार का धन है वो चूंकि पब्लिक का पैसा है तो आप भी इसके अंतर्गत आते हैं, यानी कि एनजीओ भी आ गए। मजेदार बात है कि सन 2013 में भी बकायदे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने, यानी कि राष्ट्रीय सूचना आयोग ने, हमारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके लिए ये कहा था कि ये भी सूचना के अधिकार के दायरे में आते हैं, यानी कि हमारी राजनीतिक पार्टियों से भी सूचनाएं मांगी जा सकती हैं। और उसमें तर्क यही था क्योंकि ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये जनता से चंदा लेती हैं तो वो जनता का पैसा है, और अगर जनता पैसा दे रही है तो ये जनता का अधिकार है कि वो जाने कि उसके पैसे का क्या हो रहा है, उसके धन का क्या हो रहा है। लेकिन राजनीतिक दलों ने इससे आने से साफ साफ इनकार कर दिया है। अब आप देखिए कि अब एक ऐसे समय में, इन सब को लेकर के चलिए जो मैंने 3 घटनाएं अभी जो लेटेस्ट बताई है, अब एक ऐसे समय में जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि नहीं, हम भी उसी दायरे में आते हैं, तो अब इसका जो एक नैतिक दबाव पड़ेगा उसे आप महसूस कीजिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना जो आरटीआई है उसके इंपॉर्टेंस को शो करता है, उसके महत्व को शो करता है, खासकर डेमोक्रेसी में, कि अगर सुप्रीम कोर्ट उसके दायरे में है तो अब ये जो राजनीतिक दल अपने आप को इस दायरे से अलग बनाए रख पाई हैं वो कितना बनाए रख पाएंगी, डेफिनेटली यह एक प्रश्न उठेगा। अब आप देखिए कि दूसरी बात, कि सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दे करके आप यूं कह लीजिए कि जनता के मन में और जनता की आंखों में अपने कद को और ऊपर उठा लिया है, उन्होंने अपने आप को बकायदे उन्होंने भी पब्लिक ऑफिस मानते हुए एक तरह से समानता के स्तर पर स्थापित कर दिया है। नो डाउट कि सुप्रीम कोर्ट की जो स्वतंत्रता है उस पर हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, और ये उन्होंने बकायदे उसमें कहा भी है। एक बात यहां और भी है, आप कुछ समय से देख रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ चीजों को लेकर के एक तरह से विवाद की स्थिति बन गई है, जैसे जजेस के जो स्थानांतरण होते हैं, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस के स्थानांतरण, उस पर भी ये बात कही जाने लगी है कि कहीं सरकार का हस्तक्षेप हो रहा है। जजों के जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं हाई कोर्ट जजेस के, और हाई कोर्ट जजेस के बाद फिर उनका प्रोन्नति करके और उनको सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जाता है, इन सब मामले को लेकर के भी एक प्रकार से एग्जीक्यूटिव यानी कि सरकार और न्यायालय जुडिशरी उनके बीच में विवाद की स्थिति बन जाती है। कुछ समय पहले आपने ये भी सुना, अखबारों में काफ़ी कुछ आया कि सुप्रीम कोर्ट में जो मास्टर ऑफ रोस्टर तैयार किया जाता है उसमें भी कुछ भेदभाव होते हैं, तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट के भी जो कुछ काम है वो कहीं ना कहीं विवाद के केंद्र में रहे हैं। तो अब चूंकि उसने अपने आप को आरटीआई के दायरे में लाने की स्वीकृति दे दी है तो स्वाभाविक रूप से ये जो स्थितियां हैं विवाद की, इसके स्वर भी थोड़े से कहीं ना कहीं धीमे होंगे, और इसका प्रभाव यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट की जो स्थिति है वो और बेहतर होगी। और सुप्रीम कोर्ट की वर्तमान स्थिति कितनी बेहतर है, अयोध्या मामले में उनका दिया गया जो निर्णय है वो इस बात का प्रमाण है कि किस तरीके से पूरे देश ने उनके इस निर्णय को स्वीकार किया है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको कुछ एंगल आपको बताए हैं, आखिरी में मैं एक बात आपसे और कहना चाहूंगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, और ये आप इसे अलग से नोट कर लें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, जो पारदर्शिता है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दोनों अलग अलग नहीं है। ट्रांसपेरेंसी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभाया जा सकता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आरटीआई है वो निगरानी रखने के लिए नहीं है कि संस्थानों पर, यानी कि जो पब्लिक संस्थान इंस्टीट्यूशन है उन पर निगरानी रखी जाए। इसका जो मेन तत्व है या जो केंद्रीय भाव है वह है पारदर्शिता, यानी कि चीजें पारदर्शी हो। तो दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही। आप जो मैंने बातें कही हैं इन पर अलग अलग तरीके से सोचने की कोशिश करें, और इस पर डेफिनेटली अब आर्टिकल्स आएंगे, उससे भी आपको इस विषय को समझने में और अच्छी मदद मिलेगी। तो दोस्तों, इस मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूँ, और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं मोनी खोला और अनुपराज, आप सबका बहुत बहुत आभार। और मित्रों, अब मैं आप सबसे आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करने की इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।